आहान का थप्पड़। अरमान ने आस्था को हल्का सा अपने से दूर किया और उठ खड़ा हुआ। अब आगे? अरमान जैसे ही बाहर आया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि रौनक अपनी बच्ची को हाथ में लिए दबी पांव वहां से बाहर की ओर जा रही थी। अब रौनक को बच्ची को ले जाते हुए देखकर अरमान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी और वो तुरंत ही तेज आवाज में दहाड़ा, रुक जाओ। अब एक भराई हुई सी मर्दाना आवाज ने माहौल के सन्नाटे को खत्म कर दिया था। अब जैसे ही अरमान की तेज आवाज रौनक के कानों में पड़ी तो रौनक ने डर के मारे अपना थूक कटक लिया था और वो पूरी तरह से सहम गई थी, क्योंकि अरमान की आवाज हवा में किसी धारदार चाकू जैसी गूंज रही थी। अरमान की आवाज सुनकर आस्था भी जाग गई, साथ ही साथ आहान और पूरा का पूरा परिवार पूरी तरह से जाग गया था। वहीं अरमान की आवाज इतनी तेज थी कि नन्हा सा अंश भी डर के मारे रोने लगा था, इसलिए आहान उसे चुप कराते हुए फटाफट से हॉल में लेकर गया था। उस समय अरमान रौनक को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगा। ठीक उसी समय आहान अंश को साथ में लेकर जैसे ही वहां आया तो उसने देखा कि रौनक बच्ची को साथ में लिए खड़ी है, जिसे वो पूरी तरह कन्फ्यूज हो गया। तभी दादाजी घबराते हुए बोले, अरमान बेटा, तुम इतनी रात में इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? और ये रौनक, बिटिया को तो आराम करना चाहिए था, ये यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? वहीं आस्था भी सवालिया नजरों से रौनक को टकटकी लगाए देख रही थी। रौनक की आंखों से लगातार झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा था। वहीं आहान भी अब खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत ही अंश को अपनी गोद में लिए रौनक के सामने आकर खड़ा हो गया और कन्फ्यूज होते हुए पूछा, रौनक, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ है? ठीक उसी वक्त अरमान ने रौनक की ओर इशारा किया और हल्की नाराजगी से कहा, मैंने देखा कि ये लड़की प्रिंसेस को गोद में लेकर यहाँ से बाहर जा रही थी। ये कहते हुए अरमान की आवाज़ पूरी तरह से अंगारे बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौजूदगी से ही हवा में किसी रहस्य की गूंज उठ गई हो। अरमान के मुंह से निकले उन शब्दों ने सभी को सदमे में डाल दिया था। वहीं आहान की हालत उस समय ऐसी थी जैसे कांटों तो खून नहीं निकले। रौनक की इस हरकत के कारण आहान के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी दोनों आंखें हैरानी से बुरी तरह से फैल गई थी। उसके चेहरे पर हैरानी ही हैरानी नजर आ रही थी। रौनक की आंखें भर आईं पर उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उसी वक्त राधिका, रश्मि, वंशिका और आस्था तुरंत आगे आए और रौनक को संभालने लगे। तभी रश्मि ने कुछ झिझकते हुए रौनक से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही थी? क्या हो गया तुम्हें? सब ठीक तो है ना? वहीं नानी माँ की आंखें भी चिंता से भर आई थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने खुद के इमोशंस को संभाला और घबराई आवाज में चिंतित होकर पूछा, बताओ ना बिटिया, क्या हुआ तुम्हें? जब से तुम हॉस्पिटल से लौटी हो तब से तुम काफी खोई खोई से लग रही हो। हम समझ नहीं पा रहे हैं, आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? बताओ ना बिटिया, क्या बात है? वहीं दादाजी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वो रौनक से ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या बात है बेटा, क्या तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है? सब लोग अलग अलग तरीके से रौनक से सवाल पूछते जा रहे थे, लेकिन आहान एकदम पत्थर की तरह जम गया था, मानो जैसे उसकी पूरी दुनिया रुक सी गई हो। सबके उलझन भरे सवाल सुनकर रौनक की धड़कनें तेज हो गई। उसके दिल में इमोशन का जबरदस्त तूफान मचा हुआ था। उसे ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने उसकी दुखती लग पर हाथ रख दिया हो। रौनक ये सब दबाव और सदमा झेल नहीं पाई और दर्द भरी आवाज में चिल्लाई, बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन जिस शख्स की वजह से मेरा इस घर से रिश्ता है, जिसे मुझसे प्यार करना चाहिए, वो तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता। उसे तो मेरी और मेरी बेटी की कोई परवाह ही नहीं है। जब से मेरी बेटी इस दुनिया में आई है तब से आहान ने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि उसे बेटी चाहिए थी। कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि उसे हमेशा से ही बेटा चाहिए था, ताकि वो उसे अंश के जैसा चैंपियन बना सके। क्या उसने एक बार भी खुशी खुशी अपनी बेटी को गोद में लेने की कोशिश की है? क्या उसने एक बार भी अपनी बेटी को लाड दुलार किया है? नहीं ना। फिर थोड़ा रुककर रौनक ने रोते हुए अपनी बात जारी रखी, जब मेरी बेटी हुई तब मैं समझ गई कि आहान मुझे एक न एक दिन छोड़ देगा, और इससे पहले कि आहान मुझे छोड़ दे, उससे पहले मैं खुद उसे छोड़कर यहाँ से दूर चली जाऊंगी और अपनी बेटी का पालन पोषण मैं अकेले कर लूंगी। जिस तरह से मेरी माँ ने मेरा किया था, उसी तरह मैं भी अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। ये कहते हुए रौनक की आंसुओं से भरी लबालब आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी, जिनमें गुस्से और नाराजगी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रौनक किसी भी हालत में अपनी बेटी के साथ ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। उसने रोते हुए आहान के प्रति अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी थी। रौनक के शब्द किसी धमाके की तरह थे, जिसे सुनकर आहान का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब होने लगा था। सबके चेहरे हैरत में डूब गए थे, कोई कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था। रौनक के इन शब्दों ने वहां के माहौल को और भी बिगाड़ कर रख दिया था। अरमान ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाया और वो सोफे पर बैठ गया। आस्था उसकी बगल में खड़ी हो गई। ध्रुव ने अंश को गोद में ले लिया था। आस्था ने आहान को देखते हुए पूछा, आहान भैया, ये रौनक क्या कह रही है? और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हमने भी ये नोटिस किया है कि आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। जब से आपकी बेटी हुई है तब से आपने एक बार भी अपनी खुशी जाहिर नहीं की है। क्या वाकई आप सच में अपनी बेटी से नाखुश हैं? आखिर ये सब हो क्या रहा है? जवाब दीजिए भैया। इस पर सुमित और आकाश भी आगे आए और रूखेपन से आहान को फटकारने लगे। हाँ, हम भी कुछ दिनों से तेरा अजीब सा बर्ताव देख रहे हैं, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, आहान का दिमाग उस समय जैसे चलना बंद हो गया था। उसके दिमाग में इस समय एक ही चीज चल रही थी, डर, डर और सिर्फ डर।
उसकी नजरें सिर्फ रौनक और अपनी नवजात बेटी पर ही टिकी हुई थी। मगर आहान का चुप रहना ध्रुव के मूड को और खराब कर गया और ये बात अब ध्रुव को गुस्सा दिला गई और उसने अंश को अपनी गोद में से सीधे आकाश की गोद में थमा दिया था और अपनी नजरें आहान की ओर घुमाई। उसने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए आहान के कंधों को झकझोर दिया और गुस्से से भरकर बोला, आहान मुझे सच में तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिरकार तुझे हो क्या गया है? हाँ बोल, जवाब दे मुझे, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू इतना गिर गया है कि तुझे अपनी बेटी के जन्म को लेकर कोई खुशी नहीं है? हाँ क्या तुझे हम लोगों की खुशी दिखाई नहीं देती? वहीं आहान का ध्यान पूरी तरह से रौनक पर ही था, बाकी बातों पर उसका कोई ध्यान ही नहीं था क्योंकि उसका मन कहीं और भटक रहा था। लेकिन ध्रुव की आवाज ने अचानक से उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ध्रुव के कठोर शब्द सुनकर आहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने अपना आपा खो दिया हो और अगले ही पल एक करारे थप्पड़ ने ध्रुव को दिन में तारे दिखा दिए थे और आहान की नजरें अनजाने में तीखी हो गई और वो जवाब में चिल्लाया, जस्ट शट अप, वो मेरी बेटी है। आहान कुनगुन सिन्हानिया नाम है उसका।
सभी लोग जो आहान पर अब तक सवालों की बौछार कर रहे थे अगले ही पल ध्रुव को देखकर थोड़ी देर के लिए सन रह गए। सभी की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। सभी के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे कुछ समझ नहीं पा रहे, यहाँ हुआ तो हुआ क्या। वहीं आहान की आखिरी लाइन सुनते ही ध्रुव के होठों पर एक मुस्कान थिरक उठी थी। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने दिलो दिमाग पर हावी होती नर्वसनेस को शांत करने की कोशिश की। वहीं आहान धीरे और हल्के कदमों से सीधा रौनक के सामने जाकर खड़ा हो गया था। सिचुएशन को भांपते हुए रश्मि ने आगे बढ़कर रौनक की गोद से उसकी बेटी को ले लिया था और तभी आहान सीधा घुटनों के बल बैठ गया और अचानक रोने लगा। उसके कांपते कंधे उसकी पूरी तरह टूट चुकी हालत को बयां कर रहे थे। आहान को इस तरह रौनक के सामने घुटनों पर बैठकर रोता हुआ देखकर सबकी आंखें नम हो गई थीं। रौनक को अचानक ऐसा लगा जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर आ जाएगा। आहान को अपने सामने इस तरह रोते हुए देखना उसके लिए उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और दर्दनाक मंजर था। तभी आहान ने आह भरी और बुझी हुई आवाज में अचानक से कहा, मैं बाप बनने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत खुश था। मुझे लगा था कि जिस तरह अरमान भाई को अंश हुआ है, मारिया दीदी को उनका बेटा हुआ है, उसी तरह मेरा भी बेटा आएगा और मैं उसके साथ भी वैसे ही खेलूंगा जैसे इनके साथ खेला करता हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे बेटी हुई है तब मैं एकदम फ्रोजन हो गया और उस वक्त मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि मैं अपने एक्सप्रेशन और अपने इमोशंस कैसे जाहिर करूं। मैंने अपने बेटी को लेकर तो अपने मन में कई सारे प्लान बना लिए थे लेकिन अपनी बेटी को लेकर कोई प्लान बनाए ही नहीं थे। और जब कान्हा जी ने मुझे बेटी दे दी तो मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों, जैसे मैं ना तो जुबान से कह सकता हूं और ना ही अपनी फीलिंग से जाहिर कर सकता हूं। मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे कि मैं अचानक बड़ा हो गया हूं। अब तक मैं इस घर का छोटा बेटा बना रहा, मैंने सबको हंसाया रुलाया और खूब मौज मस्ती की। पर जब मेरी बेटी हुई तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असल में बड़े होने की जिम्मेदारी क्या होती है। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, मेरी दुनिया तो दादाजी और अरमान भाई तक ही सीमित थी। अरमान भाई की वजह से कभी कोई औरत हमारे घर में नहीं आई, घर में कोई औरत थी ही नहीं। हाँ कॉलेज में मैं लड़कियों के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लेता था लेकिन किसी भी लड़की से प्यार करने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि अरमान भाई को वो पसंद नहीं था। इसीलिए मैंने कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई, ना ही मैंने किसी लड़की को अपनी दोस्त बनाया। सिर्फ ध्रुव मेरा दोस्त था और आकाश भाई, सुमित भाई, जिनकी मैं अपने भाई की तरह इज्जत करता हूँ। लेकिन जब से आस्था भाभी अरमान भाई की जिंदगी में आई है तब से उन्होंने घर का सारा माहौल ही बदल दिया है। घर में भाभी का प्यार क्या होता है पहली बार समझ आया। उन्होंने पहली बार हमें घर का बना खाना खिलाया और अरमान भाई धीरे धीरे बदलने लगे, भाई भी भाभी को टूटकर चाहने लगे थे। मेरी जिंदगी में औरत के तौर पर सबसे पहले आस्था भाभी आई, फिर रश्मि दीदी और फिर तुम आई रौनक। और फिर मैं तुमसे गहरी मोहब्बत कर बैठा, मैं खुद नहीं जान पाया कैसे। और अब जब मेरी जिंदगी में एक और लड़की आई है जो कि मेरी अपनी बेटी है तो मैं चाहकर भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मेरी कभी कोई बहन नहीं थी और मैंने कभी किसी माँ का प्यार नहीं देखा, जिम्मेदारी क्या होती है इसका मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। और जब मैंने मेरी बेटी को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई, जीने की नई वजह मिल गई। तब मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारियां शुरू हो गई हैं और अब मुझे अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देनी है, उसे दुनिया की हर खुशी देनी है और उसे इस दुनिया में सबसे सुरक्षित रखना है। और इसी वजह से मैं मैच्योर बनने लगा। लेकिन इस कशकमश में मैं अपनी फीलिंग जाहिर नहीं कर पाया और तुमने और बाकी सबने मेरे इमोशंस को गलत समझ लिया। आहान के शब्द ऐसे थे मानो जैसे कोई बच्चा शिकायत कर रहा हो, जिसे सुनकर सब लोग पूरी तरह से चौंक गए थे। आस्था की आंखों से भी आंसू बेकाबू होकर बहने लगे थे।
वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधा आहान के पास जाकर उसके कंधों को पकड़कर उसे उठाया और उसके आंसू पहुंचते हुए कोमलता से बोली, आहान भैया, आप इस घर की मुस्कुराहट है, इस घर की जान है। जब से आपने इस तरह का साइलेंट बिहेवियर करना शुरू किया है, तब से इस घर की मुस्कुराहट ही गायब हो गई। हम सबको लगा कि आप अपनी बेटी होने की वजह से नाखुश हैं और इसीलिए आप इस तरह बिहेव कर रहे हैं। रौनक भी इसी वजह से इनसिक्योर हो गई थी, क्योंकि बचपन में उसके पिता ने भी उसकी माँ को इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने भी एक बेटी जन्म दिया था। उसे लगा कि शायद आप भी। इससे पहले आस्था अपने शब्दों को पूरा कर पाती, उससे पहले आहान आस्था के गले से लग गया और एकदम से बोला, भाभी, मुझे लगा था कि मैं रौनक से ज्यादा इस दुनिया में किसी भी लड़की को प्यार नहीं करूंगा, लेकिन जब से मैंने मेरी बेटी को देखा है, तब से मुझे लगा मेरी सांसें रौनक में नहीं बल्कि मेरी बेटी में बसती हैं, मेरी बेटी में। दोस्तों, इस स्टोरी के एंडिंग एपिसोड पर वर्क कर रही हूँ, ऑलमोस्ट एंडिंग लिखती हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा मुझे और वक्त लग रहा है। जब तक बढ़िया एंडिंग एपिसोड नहीं मिल जाते, मैं बार बार एडिट करती रहूंगी, इसीलिए मुझे और एपिसोड देने में टाइम लग रहा है। कृपया साथ बनाए रखें, मैं बेस्ट टू बेस्ट एंडिंग ट्राई करूंगी। थैंक यू ऑल।